ओम शांति। ज्ञान सरोवर के इस सुंदर परिसर में आप सबको आत्म चिंतन करने का बहुत सुंदर स्व अवसर प्राप्त हुआ है। जब से आप आए हैं जरूर आत्म चिंतन ही कर रहे होंगे। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा जो हूं जैसी हूं, रियल को रियलाइज करो। हम सब जानते, बाबा ने हम सबको पहचान दी कि आप सब आत्माएं अनादि स्वरूप में बहुत पवित्र स्वच्छ बाबा के बिल्कुल समीप परमधाम में निवास करने वाली, बाबा के गले में जैसे मोती पिरोए हुए हैं, ऐसा स्थान आपका परमधाम घर में। फिर जब इस सृष्टि नाटक में आप आत्मा खेल खेलने के लिए आई, पार्ट शुरू किया, पार्ट बजाना, तो देव पद में, देव घराने में, सतयुग और त्रेता के अंदर आप सब आत्म अभिमानी स्थिति में ही थे। देह अभिमान नहीं था और देह अभिमान न होने के कारण वहां पर किसी भी विकार का वार नहीं हुआ। सब विजयी थे, पावन थे, आत्म अभिमानी स्थिति थी। इसलिए शरीर लेना और शरीर छोड़ना ऐसे था जैसे वस्त्र उतारा, वस्त्र पहन लिया, कोई दुख की फीलिंग नहीं होती थी। इसलिए देवताओं को कहते हैं, देवताएं अमर थे। अमर का अर्थ लोग समझते हैं शायद वो कभी शरीर छोड़ते ही नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं जब पुराना वस्त्र हो जाता है तो उसको बदल देते, नया ले लेते, वहां पर मरने का नाम नहीं है, इसलिए उसको अमर लोक कहते हैं। तो हम सब अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में सतयुग और त्रेता तक संगम युग की प्रारब्ध के रूप में सुख और शांति का अनुभव करते रहे। लेकिन जब मध्यकाल आया, द्वापर युग शुरू हुआ, रावण राज्य शुरू हो गया, आत्मा अपने स्वस्वरूप को, स्वधर्म को भूल गई, तो देह अभिमान शुरू हो गया। और देह अभिमान के कारण आत्माओं से कई पाप कर्म होने लगे, विकर्म होने लगे। धीरे धीरे वो एकदम पतित, दुखी, तमो प्रधान बनती गई। और कलियुग के अंत में जब संपूर्ण वो पतित बन जाती है, विकारी बन जाती है, तब बाबा फिर से उसे आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझ करके मुझे याद करो। आत्म अभिमानी स्थिति में चलते फिरते, कर्म करते, व्यवहार में आते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करो। शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, स्थापना के समय बाबा ने खुद भी और अपनी सभी बच्चियों को, बच्चों को यही पाठ पढ़ाया, लिखो बच्चे, 108 वाले को, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने क्या अभ्यास किया, अपने परिवार को देखते हुए बाबा के अंदर से आता था, ये जसोदा जो बाबा की युगल थी, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। बाबा के बेटे का लौकिक नाम नारायण बाबा ने रखा था, ये नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है, नारायण आत्मा है। ऐसे ही बाबा ने बहुत अच्छी तरह से इस पाठ को पक्का किया। इसलिए देह और देह के संबंधों की आकर्षण समाप्त हो गई। बाबा को कोई भी लौकिक संबंध के रूप में देख नहीं सकता था। कोई भी सामने आया, चाहे बाबा की बहू आई, चाहे बेटी आई, चाहे पत्नी आई, चाहे कोई भी संबंधी आए, सब बाबा के बच्चे हैं। और बाबा ने उसी नजर से देखा, ये आत्माएं हैं, ये आत्माएं हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, हमारी दादियों ने इतना अभ्यास किया शुरू शुरू में, जो लौकिक में संबंध थे वो संबंध सब भूल गए। आए तो परिवार के परिवार थे, मम्मा के साथ मम्मा की लौकिक माँ भी थी, बहनें भी थीं, लेकिन लौकिक माँ मम्मा को माँ बोले, कितना वंडरफुल। आप समझ सकते हो, एक बेटी को लौकिक माँ अपनी कह रही है, माँ है मेरी, है वो भान खत्म कर दिया, देह अभिमान खत्म हो गया। बाबा ने जिस पद पर, जिस सीट पर किसी को बिठाया, हर एक उसी नजर से उससे मिले, देखे, बात करे, अनुभव करे, तो आत्म अभिमानी स्थिति बनाने से, जितना देह अभिमान का संबंध था, रिश्ता था, और देह अभिमान के कारण जो अनेक विकारों के अंश प्रवेश हो रहे थे, वो सब समाप्त हो गए। अगर हम सब ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनना लक्ष्य रख करके आए हैं, तो संपूर्ण पावन बनने के लिए हरेक को पहले मेहनत करनी है, इस देह भान को गलाने की। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इतना अच्छा पाठ पक्का करो, जो देह का नाम, देह का रूप, देह का धर्म भूल जाए। अभी भी कई बाबा के बच्चे हैं जिनको देह के नाम रूप के साथ साथ अपने जाति और धर्म को भी भूलना बहुत मेहनत है। मुझे कभी कभी हंसी आती है, कोई कोई कहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे जाति वाले, कुल वाले आते हैं, इसलिए कोई नीच जाति वाला नहीं आता। माना जो आजकल की दुनिया के अंदर नीच जाति मानते हैं, वैसे तो सरकार कहती है सब समान हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा उसका कार्य व्यवहार छोटा है, कोई चमड़े का कोई कार्य करे, कोई सफाई का कार्य करे, कोई धोबी का कार्य करे, और वो कार्य करने वाला व्यक्ति अगर क्लास में आज करके बैठा हुआ हो, तो दूसरे लोग उनके साथ बैठना क्या समझते हैं, मेहनत समझते, कैसे बैठेंगे उनके साथ। इसलिए बहुत संभालना पड़ता है। संसार में कलयुग के अंदर इस देह अभिमान ने इतना पसारा, इतना विस्तार किया है, जो धर्म, जाति, कुल, मर्यादाएं, कितने सारे भेद हो गए, बंटवारा हो गया। जबकि हम सब एक घर से आए, एक पिता के बच्चे, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब धर्म और राजसत्ता भी एक के हाथ में, सतयुग और त्रेता के अंदर यथा राजा तथा प्रजा, कोई भेद था, ये इस जाति का है, ये कुल का है, ये इसका है, लेकिन देह मान ने बंटवारे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। बाबा को इसलिए इस संगम पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी जल्दी देह मान खत्म नहीं होता, देह मान कहीं ना कहीं अपना वार कर लेता है, इसलिए कोई न कोई विकार, कोई न कोई अंदर की विकृति जो है बाहर आ जाती है। इसलिए हम सबको बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझने से क्या होगा, एक तो बाबा ने आत्मा का इतना गहरा ज्ञान दिया कि बच्चे ये आत्मा जब अपने घर से पार्ट बजाने के लिए आई, तो हर एक आत्मा, जितनी आत्माएं ऊपर से आई हैं, हर एक एक्टर हैं, और हर एक एक्टर की एक्ट जो है वो अपनी अपनी है, एक की एक्ट दूसरे एक्टर से मिल नहीं सकती। चाहे आपके बहुत संबंध में हो, चाहे जुड़वा बच्चे भी पैदा हो रहे हों, लेकिन दोनों के संस्कार, दोनों के खान पान, दोनों की भाषा बोलचाल सब अलग अलग। आज इतनी बहुत कल्प वृक्ष की वैरायटी हम सब देख रहे हैं, कोई की शरीर की भी शक्ल नहीं मिलती, स्वभाव भी नहीं मिलते, उनके संस्कार भी नहीं मेल खाते, विचार भी मेल नहीं खाते। कितना वंडरफुल वैरायटी ड्रामा बना हुआ है, और हम सब एक्टर पार्ट बजाने वाले, पार्ट बजाते हुए अगर इस रूप में एक दूसरे को देखते हैं तो हमारी जो अपेक्षाएं रहती हैं, जो घरों में आज कले कले अशांति रहती है, तनाव रहता है, उसका मूल कारण है कि हम उसको एक्टर की रीति से उसके पार्ट को साक्षी होकर के नहीं देखते। वो समझते हैं मैंने बच्चा, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसकी पालना की, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, मैंने इसको योग्य बनाया, अब जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा इसको करना चाहिए, ये भावना रहती परिवार में। और इसके कारण ही कितने दुख हैं, कितनी अशांति है, कितनी कलह कलेश हो गई, क्योंकि कोई भी कोई के विचारों से सहमत नहीं है। परिवार में भी अगर कोई पर ज्यादा दबाव रखोगे, कोई अधिकार रखोगे, मोह ममता रखोगे, तो दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को दुख की दुनिया से निकाला है। कहता है बच्चे दुख के सागर से तुम निकल करके संगम पर आ गए हो, अब आप बच्चों को दुख के सागर की लहर भी नहीं आनी। वो तभी हो सकता है जब बहुत अच्छा अभ्यास हो कि हम सब आत्माएं हैं। तो पहले इस पाठ को इतना अच्छा पक्का कर लो, जो देह अभिमान, देह का धर्म, देह की जाति, देह की पद, देह का पोजीशन, जो देह अभिमान है वो गल जाए। इसलिए तो योग भट्टी करने आए हैं। किसलिए भट्टी में क्यों डाला जाता है? कोई भी चीज अगर ईंट कच्ची है तो उसको भट्टी के अंदर डाल के पका देते हैं। अगर लोहे के रूप को कोई अच्छा जेवर, अच्छा औजार बनाना है तो उसको भी तेज आग में डाल करके, भट्टी में डाल करके, गला करके उसको भी औजार का रूप दे देते हैं। सोने को सोनार लोग गला करके उसको इतना पिघला देते हैं, जो उसके अंदर अगर कोई मिलावट है तो अलग हो जाती है, और रियल गोल्ड को कैसे भी वो मोल्ड कर लेते हैं, उसकी भी भट्टी होती है। आप सब इस योग भट्टी में आए हैं किस लिए? अपने देह अभिमान को गलाने के लिए। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ क्लास सुनने से नहीं होगा। क्लास तो बहुत सुने हैं, मुरलियां बहुत सुनी हैं, अंदर अंदर घोटना होगा, मैं आत्मा हूं, मैं देख रही हूं, मैं सुन रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं भोजन कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं। अभ्यास करो, और चलते फिरते अगर ये आत्म अभिमानी स्थिति का आपने अभ्यास कर लिया तो आत्मा एक हल्की है, बहुत बोझ नहीं है उसके ऊपर। बोझ उस किस चीज का है? किसी आत्मा पर अगर कोई बोझ है तो है व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ चिंतन का, और ऐसे अगर कोई कर्म हो गए हैं तो उन कर्मों के हिसाब किताब का, कोई ऐसी जवाबदारियां लेकर के आप आए हैं तो उन जवाबदारियों का, ये मेरी जवाबदारी, ये मेरा काम, ये मेरे संबंधी, बोझ उसका है, बोझ आत्मा के ऊपर नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल लाइट है, हल्की है, परम धाम घर से आई। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा शब्द साकार बाबा की मुरलियों में आता है, बच्चे अंत समय में तुम बच्चों को मैं अपनी पलकों पर बिठा करके ले जाऊंगा। ये पलकें क्या होती हैं? इस पलकों पर भी आत्मा बैठ सकती, इतनी हल्की है। नहीं तो पलक को ऐसे कर दो तो भी ऐसे डर के नीचे ऊपर हो जाएगी। और बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को, आत्माओं को पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा, तो चेक करना, यहाँ आए हो क्या हम पलकों पर बैठने लायक बने हैं, इतने हल्के हैं, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, सब बाबा को दे दो। कहता बच्चे इतना अच्छा इस समय तुम्हें मैं सर्वेंट के रूप में मिला हूं, ओबीडियंट हूं, आप सब बोझ मुझे दे दो। बुद्धि से कहो बाबा ये सब तेरा, ये सब तेरा तेरा तेरा, मेरा वो बाबा हो जाएगा। और जब मेरा बाबा है, सब बोझ उसने ले लिया, तो आत्मा पहले अपने स्वरूप में बहुत हल्की है। माताएं बोझ नहीं रख के बैठना योग में, नहीं तो नींद आएगी ऐसे ऐसे। बोझ लेकर के अगर यहां बैठोगे तो योग नहीं लगेगा। परमधाम का, सूक्ष्म वतन का, बाबा के मिलन का अनुभव नहीं होगा। बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आए हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा स्थान है, साफ है, स्वच्छ है, बना बनाया भोजन मिलता है, कोई चिंता नहीं है, इसके लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम यहां आए हैं आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। जो आत्मा बिल्कुल संपूर्ण पावन बन गई, वो हल्की है, स्वच्छ है। और जरा भी अगर अपवित्रता है, इम्प्यूरिटी है, तो वही मैल बोझ अनुभव कराती है। इसलिए आत्मअभिमानी स्थिति में स्थित होकर के पहले अपने बोझ को हल्का करो, सब बोझ बाबा को अर्पित। बाबा ये तो नाटक खेलने के लिए आए हैं, पार्ट बजाने के लिए आए हैं, ये कोई मेरे नहीं है जिनका मैं बोझ रखूं। अगर मेरा समझोगे तो बोझ जरूर है। 3 दिन से एक माता मेरे पास रोज आ रही है, ये रोज सुबह सुबह आकर के इतना टाइम वेस्ट करते एक बच्चे के कारण। अब बच्चा, उसको संग ऐसा कुछ खराब मिल गया, एक ही बच्चा है, 22 साल की उम्र है, वो कुछ न कुछ ड्रग्स लेने लगा, शराब पीने लगा, और कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, सारा दिन सोया रहता है। माँ इतनी दुखी, इतनी परेशान, आप कुछ योग करो, आप कुछ योग करो, वो ठीक हो जाए। अब जब तक उसका मुंह खत्म नहीं हुआ, जब तक ये मेरापन खत्म नहीं हुआ, तब तक कोई योग का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर योग का प्रयोग उसको करना या कराना है, तो पहले मेरे से मरना पड़ेगा, मेरा नहीं है ये सब, बाबा आप क्या है, आप इसको ठीक कर सकते हो, आप समर्पित करो। उस आत्मा का जो पार्ट है वो बजा रहा है, आप बिल्कुल हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। लेकिन वो तभी हो सकते हो जब ये पक्का हो आत्मा आए, कोई हिसाब किताब था इसलिए मेरे सामने आई है, मेरे घर में आई है, और ये पूरा जब तक नहीं होगा तब तक ये हमारे साथ ही रहेगी। योग करो, शुभ भावनाएं रखो, अच्छा संग दो, स्नेह दो, शुभ चिंतक बनो, लेकिन उसके लिए दुखी होकर के प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर हम सब बहुत हल्के रूप में, बहुत हल्का माना, जरा भी कोई देह में, संबंधों में, पदार्थों में, किसी भी वस्तु में अगर जरा भी अटैचमेंट है, मोह है, तो वो बोझ है। और जब उस बोझ को हम बाबा के आगे अर्पित करते, बाबा ये सब तेरा है, हल्के हो जाओ, मैं बिल्कुल तेरा बच्चा हूं। कई बार बाबा कहता है बच्चे बन जाओ, बच जाओगे। बच्चे नहीं बनोगे, बड़े हो, दादा दादी, नाना नानी, सासू ससुर, बस बोझ ही बोझ है, जवाबदारियों का बोझ, फिर क्या योगी जीवन का अनुभव करोगे। हमें टॉपिक दिया है योग, युक्त स्थिति का आधार आत्म अभिमानी अनुभूति। जब तक आत्मा अपने स्वस्वरूप में, स्वधर्म में स्थित नहीं होती है, तब तक उसका योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम देहधारी से हम कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा योग कोई देहधारी के साथ नहीं है, ब्रह्मा माध्यम है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ हमारा योग नहीं है। जैसे वो बाबा को याद कर रहा है, ऐसे कहता बच्चे तुम मुझे देख करके याद करो, ऐसे मैं भी इतने सब बच्चों के बीच में हूं, परिवार के बीच में हूं। ब्रह्मा बाबा ने इतने सब बच्चों के बीच में इतनी सेवाएं करते, इतनी परीक्षाओं को पास करते अपने को संपन्न बना लिया, कर्मातीत बन गए। एक ही अभ्यास किया, मैं विदेही हूं, अशरीरी हूं, इस शरीर से अलग हूं, निराकारी स्थिति का अभ्यास किया और निराकारी स्थिति ने निर्विकारी बना दिया। अगर आत्म अभिमानी स्थिति का अच्छा अभ्यास हम कर रहे हैं तो कोई भी कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को धोखा नहीं दे सकती। मैं आत्मा मालिक हूं, मालिक समझ करके अगर कर्म इंद्रियों को कार्य में लगाते हैं, अधिकारी समझ करके रखते हैं मैं अधिकारी हूं, मालिक हूं, तो ये कोई कर्म इंद्रियां बिना ऑर्डर के काम नहीं कर सकती। कहते मैं चाहता नहीं था, बोल दिया, देख लिया, सुन लिया, हो गया। ये कौन सी स्थिति है? परवश स्थिति, अधीनता की स्थिति। अधिकारी आत्मा जिसने अपने कर्मेंद्रियों पर अधिकार कर लिया, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो गई, सब कर्मेंद्रियां उसके आर्डर प्रमाण कार्य करती हैं। और ये स्थूल कर्मेंद्रियां तो ठीक, लेकिन आत्मा की सबसे पहली शक्ति जो है चैतन्य शक्ति, मन, संकल्प शक्ति, वो अपने कंट्रोल में आ जाती है। और संकल्प अगर कंट्रोल में आ गए, संकल्पों पर हमारा अधिकार रहा, क्या सोचना है, कितना सोचना है, नहीं सोचना है या सोचना है, उस पर तो अधिकार हो। आजकल कईयों को पता कौन सी बीमारी है अधिक सोचने की? कोई भी बात है बस संकल्प चलने लगे, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। और हमारी दादियों ने हम सबको कहा डोंट थिंक, सोचना ही नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सोचने से कोई ठीक हो जाएगा क्या? इसलिए सब बाबा के बच्चों को जो काम की चीजें नहीं हैं, जो मेरे उन्नति में रुकावटें हैं, मुझे नहीं सोचना है, जो व्यर्थ है उसको नहीं बिलोड़ना है, इसलिए ध्यान देना। जैसे बाबा असोचता है, अभोगता है, अकर्ता है, लेकिन सब कुछ कर रहा है, इतना सब सोच भी रहा है, लेकिन उसका अभिमान नहीं है। हम सब जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, मैं आत्मा मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, इन कर्म इंद्रियों की मालिक, उतना कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी और कोई भी कर्म विकर्म नहीं बन सकता। कोई भी आत्मा इस समय बिना विकर्मों के नहीं रह सकती, क्योंकि देहमान है और देहमान में नाम की इच्छा, मान की इच्छा, शान की इच्छा, धन की इच्छा, पोजीशन की इच्छा, ये सब इच्छाएं व्यक्ति से गलत कर्म कराती हैं। और अगर इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हमें बनानी है तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, पक्का कर लो। क्या इच्छाएं हैं, क्या हमको साथ ले जाना, कुछ लेकर के आए थे क्या जो लेके जाएंगे? किन इच्छाओं के पीछे हम मृग की तरह दौड़ रहे हैं? बाबा कई बार कहते हैं संसार के सुख साधन सुविधाएं ये सब क्या हैं? ये मृग तृष्णा है। मृग बेचारा दौड़ते दौड़ते हफ करके हाफ करके थक करके मर जाता है, पानी नहीं मिलता। वो समझता है रेत के अंदर जो हमारे पास ये सागर का वो रेत दिखाई देता है चमकता हुआ, पानी उतर जाता है, रेत बहुत चमकता है, जिसको रेगिस्तान कहते हैं। वास्तव में वहां पर जब कोई हिरन को प्यास लगती है, मृग को, तो पानी की प्यास में भागता है, जो चमकता है धूप में नमक का पानी चमकता है, और दौड़ता है, कहता वहां पानी, वहां पानी, वहां पानी, और भागते भागते एकदम दौड़ दौड़ करके जब थक जाता है तो बेचारे की सांस निकल जाती, प्राण निकल जाते। आज के व्यक्ति की यही दुर्दशा हुई है कि उसकी इच्छाएं उसको पूरा नहीं हो रही, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। एक पूरी होती है सौ पैदा हो जाती। आत्मअभिमानी स्थिति में रहने वाली आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहती है। क्या चाहिए? बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, कोई कामना कोई तमन्ना कोई इच्छाएं नहीं है। अगर आत्मअभिमानी स्थिति है तो कोई आकर्षण नहीं है, कोई खिंचावट नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बाबा आपने मुझे दिया है। बाबा से जो कुछ मिला है अविनाशी मिला है, और आत्माएं अगर दे रही हैं तो क्या देंगी? बाबा कई बार कहते हैं आजकल मान भी जो देते हैं वो लंगड़ा मान देते हैं, आज सीट पर बिठाएंगे कल सीट से गिराएंगे, ऐसे मान की शान की प्रशंसा की इच्छा है क्या? और अगर है तो माना उसने अपने पाठ को पक्का नहीं किया कि मैं आत्मा हूं। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाली मान शान इच्छाओं के पीछे भटकती नहीं है। बाबा तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक ने इतना दिया है जो कहता बच्चे तुम भी मेरे समान दाता बन जाओ, मंगता नहीं बनो। जो कुछ बाबा ने दिया है आप सबको देते चलो देते चलो देते चलो, आपके पास भरपूर हो जाएगा, भंडार भरपूर है, देने से बढ़ेगा मांगने से नहीं। तो हम सब बाबा के बच्चे, किसी को प्यार चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, कोई को कुछ भी चाहिए, हमको बाबा ने इतना दिया है हम देते दे रहे हैं। देने में कंजूसी नहीं करना, बढ़ जाएगा आपका। स्थूल में भक्ति के भी अंदर कहते हैं धन दिए धन ना कुटे, अगर वो धन तुम सेवा में लगा रहे हो कोई अच्छे दान पुण्य में खर्च कर रहे हो तो कम नहीं पड़ेगा, अपने आप भर जाएगा, एक करोगे दस गुना आ जाएगा। और कई बाबा के बच्चों का इस संगम पर बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। कोई कुछ भी अगर बाबा के नाम पर कोई मकान बना देता है, कोई कुछ कर देता है, उसके पास सब कुछ भर जाता करके, उसको सबकी दुआएं मिल जाती। इसलिए देने से बढ़ता है, और दे वही सकता है जो भरपूर है माला माल है, और माला माल वही है जिसको हद की कोई कामना नहीं है। हद की कामनाएं किसी भी आत्मा को करोड़ों दे दो वो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर कोई कामना रखी है और कोई के पास नहीं है, देखो कई लोग यहां जब विदेशी आते हैं ना, भीलों को देखते हैं है कुछ नहीं, लकड़ी जलाई कंडे जलाए रोटी बना ली मिर्ची के साथ खा लिया और रात में डांस करते हैं और जहां देखो वहां सो जाते हैं, और करोड़पतियों को अच्छे अच्छे गद्दों पर पलगों पर अच्छे अच्छे स्थान पर भी नींद नहीं आती, वो नींद की गोली लेकर के सोते हैं, और गरीब मस्त सोते हैं डांस करते करते खुशी में नाचते नाचते। कुछ नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं कोई गम नहीं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं वाह गरीबी वाह। इसलिए कभी भी पैसे के पीछे पद के पीछे पोजीशन के पीछे नाम मान शान के पीछे हद की कोई कामना के पीछे भागना नहीं। बाबा अपने आप अविनाशी प्राप्तियां करा रहा है, सिर्फ सोल कॉन्शियस बन जाओ बस। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो, आपके अंदर सब कलाएं सब विशेषताएं सब प्रकार के गुण अपने आप बढ़ जाएंगे। जिस आत्मा ने पक्का किया मैं आत्मा एक लाइट हूं, लाइट माना एक प्रकाश स्वरूप भी हूं और हल्का भी हूं, ये डबल लाइट, वो आत्मा एकदम सर्व गुणों से संपन्न अपने आप बनती जाती है। आत्मा के सात गुण आप लोगों ने पक्के किए होंगे, पहले दिन ही पढ़ाए गए हैं, पहले लेसन में यही पढ़ाया गया कि आत्मा में सात गुण समाए हुए हैं, और ये जब सातों गुण संपन्न थे तो ये सतो गुणी सतो प्रधान कहलाती थी। सतयुग के अंदर आत्मा 100% इन ईश्वरी आत्मिक गुणों से संपन्न थी, भरपूर थी, और धीरे धीरे उन्हीं गुणों में गिरावट आई। गिरावट आते आते इस समय बेगुणी बैंगन जैसे बन गए, कोई गुण नहीं रहा। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आत्मा कई कलाएं हैं कई विशेषताएं हैं, लेकिन उसके मुख से निकलता है मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, क्योंकि आत्मा के जो सात गुण निजी थे उस सातों गुणों में गिरावट आई। और अब जब हम बाबा को याद करते हैं, योग करते हैं, आत्मा समझ करके करते हैं, कनेक्शन जुटता है। तो कनेक्शन जुटते ही क्या होता है, जैसे पावर हाउस एक स्थान पर है, लेकिन पावर हाउस की लाइन हमारे पास आई हुई है। अब उस पावर हाउस से हमें करंट लेनी है, शक्ति लेनी है, लाइट लेनी है, तो हमें कनेक्शन ठीक करना पड़ेगा। अगर कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है, या कनेक्शन के बीच में आपने कोई फ्यूज रखा है, ज्यादा लोड डाल दिया, फ्यूज उड़ गया तो भी लाइट नहीं है, कनेक्शन ठीक नहीं है तो भी लाइट नहीं है। इसलिए जो बिजली वाले होते हैं उनको बहुत समझ होती है कि अधिक लोड नहीं देना है, कनेक्शन ठीक रखना है। आज क्या लोड लेते हैं, मेरी जवाबदारी है, मेरा ये कार्य है, मुझे ये करना है, लोड डाल दिया, फ्यूज उड़ गया, कहते क्या करूं, शक्तिहीन हो गई आत्मा, कमजोर हो गई, फिर दुख अशांति उसके पीछे पीछे है, चिंता है, भय है। बाबा ने हम सबको कहा, बच्चे कोई लोड नहीं लो, सब बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ और कनेक्शन ठीक करो। कनेक्शन जोड़ने की विधि ऐसे नहीं, ये रबड़ सहित जोड़ दो, वहां से तार आ रही है और आपने रबड़ उतारी नहीं अपनी, अपने तार के ऊपर जो रबड़ है उतारना पड़ता है। तो इस तार के ऊपर आत्मा बिल्कुल तार, बिल्कुल एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिसको आज बाबा बार बार कह रहे थे स्टार है, स्टार है, कितनी बार मुरली के अंदर का आत्मा रूप में ज्योति है, स्टार है, भ्रकुटी पर रहती है। आत्मा का ज्ञान बाबा ने कितना पढ़ाया है मुरलियों के अंदर, अगर इसने किसी ने पक्का कर लिया तो ये जो रबड़ है देह, ये भूल जाती है। जब देह रूपी रबड़ को हम भूलते हैं, इसको उतारते हैं और मैं जो हूं जैसा हूं, मेरा बाबा जो है जैसा है, समान रूप में स्थित होकर के भक्ति के अंदर कनेक्शन क्यों नहीं जुटा, उसका एक कारण रहा, भले उसने शिवलिंग की पूजा की, निराकार की पूजा की, उपासना की, लेकिन खुद को देह अभिमान में रखा, खुद को नहीं समझा कि मैं भी उनके समान हूं, कहा मैं तो नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, देह अभिमान वाली बातें की। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सबका दाता है, अब कितना ऊंचा मान लिया और खुद को इतना नीचा मान लिया, कनेक्शन नहीं जुटा। अब बाबा ने संगम पर आकर के कनेक्शन जोड़ने की विधि बता दी, बच्चे तुम पहले इस देहभान से अलग, मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं। अगर कोई को योग का अच्छा और गहरा अनुभव करना है तो देह और देही, आत्मा और शरीर का अलग अलग अनुभव करो, इतना अलग अनुभव हो जैसे मैंने इस वस्त्र को धारण किया है, मैं अलग हूं, ये अलग है। एक दिन एक क्लास में करा रहा था, एक भाई खड़ा हुआ क्लास में, बड़ा रमणीक था, कहता है भाई जी कोई ने ऐसा गम लगा के चिपका दिया आत्मा और शरीर को जो अलग होती नहीं है, इतना चिपक गई है देह के साथ, कुछ भी हो जाए, एक चींटी भी इधर आ जाए तो फट से ध्यान चला जाता, इतना देहमान हो गया है। हम सब ऐसी तपस्या करें जो देह अलग है, मैं आत्मा अलग, मैंने आधार लिया है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस नहीं होते हम आत्म अभिमान स्थिति में, कई लोग अनकॉन्शियस हो जाते, ऐसी बेहोशी नहीं चाहिए, लेकिन कॉन्शियस में रहते हुए मैं इससे अलग हूं, भान नहीं है उसका, इसका अभ्यास करके देखो। आत्मा के सातों गुण कनेक्शन जुटते ही जो कमी आई है वो भर जाएंगे, और कमी आने से ही बीमारियां पैदा हुई। अगर आपने हमारे जो हार्ट वालों का प्रोग्राम चलता है उसको पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, तो हार्ट के प्रोग्राम में जो आर्टरीज ब्लॉक होती हैं उनको खोलने के लिए भी आत्मा के सातों गुणों का प्रयोग कराते हैं, क्योंकि हार्ट की बीमारी का मूल कारण है प्रेम में कहीं ना कहीं ठुकराया गया व्यक्ति। आत्मा का जो प्रेम का गुण है उस प्रेम में कहीं धोखा खाया है उसने, देहधारी के साथ कोई ने धोखा खा लिया, बेचारे के दिल में दर्द पड़ गया। इसलिए सातों गुणों को बढ़ाने के लिए मैं आपको अलग अलग इस आर्गंस के अनुसार कैसे कैसे प्रयोग करो आत्म अभिमान स्थिति में बैठ करके। आत्मा का सबसे पहला गुण जो ब्रेन से शुरू होता है, ब्रेन अगर काम ठीक न करे तो पैरलाइज हो जाएगा, शरीर एकदम बेकार हो जाएगा। ब्रेन बहुत अच्छा, शरीर के अंदर उसका फुल कनेक्शन एक एक नस नाड़ी के साथ है। और ब्रेन के लिए चाहिए समझ, ज्ञान। आत्मा का पहला गुण है आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान माना समझ, ज्ञान आत्मा परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान माना समझ। और समझदार व्यक्ति जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, जो देखता है, कहा जाता है पहले सोचो समझो फिर बोलो फिर करो, पहले तौलो फिर बोलो। बोल दिया हो गया, उसको समझदार कहेंगे क्या? वो तो अज्ञानी है, वो तो पश्चाताप कर रहा है। इसलिए जो विकर्म इस समय हो रहे हैं आत्मा के, पाप आत्मा जो बन रही है, उसका कारण है उसका ब्रेन ठीक समय पर ठीक निर्णय नहीं ले रहा है। ज्ञान स्वरूप आत्मा क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, कहते सोचने के पहले भी सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। ऐसा एक कर्म के पहले, बोलने के पहले एक सेकेंड विवेक जो काम कर रहा है साथ साथ मन के साथ, उस विवेक को सुनो। वो आपको बताएगा ये राइट है रॉन्ग है, करो या न करो। लेकिन संकल्प इतने कर्म इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं जो विवेक को दबा करके, उसको न सुन करके और संकल्प चला और कर्म इंद्रियों से कर बैठे, कर लिया तो जेल में पड़े हुए हैं, सजाएं खा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। आत्मअभिमानी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा से कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो उसको पश्चाताप करना पड़े। करना पड़ रहा माना उसने प्रैक्टिस नहीं की मैं आत्मा हूं, ज्ञान को यूज नहीं किया। ज्ञान माना समझ। और ब्रेन अगर ठीक काम कर रहा है तो समझदार व्यक्ति से कोई गलत काम नहीं हो सकते। अब दूसरा गुण है पवित्रता। आत्मा का दूसरा गुण पवित्र स्वरूप है। और पवित्रता की गिरावट के कारण ये जो नयन कमल थे, मुख कमल थे, हस्त कमल थे, कमल की संज्ञा दी गई, कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन अलग है, खिला हुआ है। कभी दृष्टि क्रिमिनल नहीं हो सकती, आत्मा पवित्र है, स्वच्छ है। देहधारियों के बीच में है, लेकिन कभी पतित संकल्प नहीं आ सकते, विकारी संकल्प नहीं आ सकते। अगर वो अपने पवित्र स्वरूप में स्थित है तो कोई कीचड़, कोई भी गंदगी का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं आ सकता। तीसरा गुण है शांति। कहते हैं धड़कन जो है फेफड़े शांति से अच्छा काम करे, न बहुत हाई लेवल में चले जाए न बहुत लो हो जाए, शांति की श्वास। प्रेम चौथा गुण है, जो हृदय का, हार्ट का गुण है। अगर प्रेम स्वरूप आत्मा है, प्यार के सागर से कनेक्शन है, तो बहुत दिल की धड़कन ठीक रहती है, भटकता नहीं है। पांचवा गुण है सुख, जो कहते हैं खाने से पीने से पेट के इंद्रियों से सुख की महसूसता होती है, बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो। पांचवा गुण है सुख स्वरूप आत्मा है। छठा गुण आत्मा का आनंद है। हार्मोन्स जितने नीचे ऊपर होते हैं उसका कारण है आनंद में कमी आ रही है। आनंद स्वरूप स्थिति जो परमात्मा के मिलन से अनुभूति होती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होता है तो कहते हैं परमानंद की अनुभूति होती है। उस परमानंद की अनुभूति से हार्मोन्स बहुत ठीक तरह से काम करते हैं। और सातवां गुण है शक्ति, जिसके द्वारा ये हड्डियां, ये मांस, चमड़ियां काम करती हैं, वो भी ठीक रहती हैं अगर शक्ति स्वरूप आत्मा, शक्ति के सागर सर्वशक्तिमान से कनेक्ट होती है, तो ये भी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो आत्मा के इन सातों गुणों को बढ़ाने के लिए हम योग कर रहे हैं। इन्हीं में गिरावट आई है और यही संपन्न बन जाएं, नहीं तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आत्मा से भी कर्म हो रहे हैं, क्रोध में आकर के बहुत ज्यादा इधर उधर देहधारियों में अटक करके लटक करके कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, इसलिए विकर्म बन रहे हैं और विकर्मों की सजा के रूप में दुख है, भोगना है, हिसाब किताब है। अब बाबा हम बच्चों को इन सब दुखों से पार ले जाना चाहता है कि मेरे बच्चे अब दुख धाम से निकल आए, सुख स्वरूप स्थिति में रहे, बहुत पवित्र स्थिति में रहे। तो हम सब बाबा से जब कनेक्शन जोड़ते हैं, राइट कनेक्शन जोड़ते हैं, कोई लोड नहीं लेते हैं, तो बाबा की सर्व शक्तियां हमारे अंदर ऐसे समाती जाती हैं और आत्मा गुणवान बनती जाती है। उस दिन बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे यथार्थ योग, यथार्थ चार्ट किसको कहते हैं, अगर आपने चार्ट रखा है याद का, योग का, लेकिन योग का चार्ट रोज लिख रहे हो कि मैं इतने घंटे योग किया, ये किया, ये किया, ये किया, प्रगति नहीं अनुभव होती, परिवर्तन अनुभव नहीं होता। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इतने समय से ज्ञान और योग कर रहे हैं, संस्कार चेंज नहीं होते, तो योग लगा या नहीं, वो यथार्थ योग है या नहीं। बाबा ने कहा योग यथार्थ माना ही योग अग्नि है, और उस अग्नि के अंदर संस्कार अपने आप परिवर्तन होंगे। अगर संस्कार चेंज नहीं हुए, जिस दिन हमने ज्ञान लिया था, जितने मेरे अंदर विकार थे, काम विकार था, क्रोध था, लोभ था, मोह था, अहंकार था, अगर उसमें जरा भी कमी दिखाई नहीं देती है तो क्या उसको योगी कहेंगे। अगर यथार्थ योग है, बाबा के साथ ठीक संबंध है, कनेक्शन ठीक है, तो आत्मा के अंदर जो गुण प्रवेश हो रहे हैं, आ रहे हैं, उससे वो शीतल काया वाला योगी बन जाता है। कहते हैं योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल हैं, अंग अंग सुगंधित हैं। अगर हमारी कर्म इंद्रियों में उत्तेजनाएं हैं, आवेश है, आवेग है, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, गालियां निकलती हैं, कुवचन निकलते हैं, उसको योगी कहेंगे क्या। विचार करना, सोचना, योगी के अंग अंग शीतल है, न उसमें आवेग है, न उसमें आवेश है, उसकी नेचर बिल्कुल मधुर, सरल, संतुष्ट है, सरल है। हम योगी हैं, कहते हम योग लगाते हैं, योगी जीवन वाले हैं, तो योगी जीवन के चिन्ह हमारे कर्मों से, हमारे व्यवहार से, हमारे चलन से लोगों को दिखाई दे। कहे हम ज्ञानी हैं, बाबा तक ज्ञानी है कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके व्यवहार को देख करके लोग कहें ये ज्ञानी तो आत्मा है, बहुत समझदार लोग हैं, कैसे रहते हैं, इतने तनावपूर्ण वातावरण में रह करके इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, इतनी महंगाई बढ़ रहा है, इतना तनाव बढ़ रहा है, इतना लोग मारा मारी कर रहे हैं, इतनी सब समस्याएं पैदा हो रही हैं, ये कौन सी कहां से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ट्रेंड आप सब, ये सेवा का सबसे अच्छा साधन है। बाबा कहता है ज्ञान सुनना और सुनाना तो बड़ा सहज हो गया है, सब सुना देते हैं, लेकिन स्वरूप से सेवा हो, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से लोगों को लगे कि बहुत महान आत्माएं हैं, ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इन्होंने कुछ पाया है, कहां से पाया बाद में खोजेंगे, लेकिन कम से कम हमारी ऐसी निश्चिंत, निर्भय, अचल, एकरस, अडोल स्थिति, ऐसी परिस्थितियों के बीच में अगर है तो लोग मानेंगे, समझेंगे, बाबा को ढूंढेंगे, ऐसा बनाया किसने इनको। तो आप सब बाबा के बच्चे, आत्म अभिमानी स्थिति की गहराई में जाना, उस पर चिंतन करो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, क्या हूं, कितनी सूक्ष्म एक शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, अगर इस शरीर से अलग हो जाती है, उसी समय शरीर को कहते हैं मिट्टी है, जड़ है, कोई इसको प्यार नहीं करता, कोई एक दिन भी, एक घंटा भी रखना नहीं चाहता, संस्कार कर दो, अलग करो, जलाओ, इतनी बड़ी शक्ति आत्मा मैं हूं, मैं अपनी शक्ति को पहचानूं, और जो कमियां आई हैं, कमजोरियां आई हैं, संस्कार बने हैं, उनको योग अग्नि से बाबा की किरण करंट ऐसे लो, जैसे कोई लेजर किरणें डाली जाती है ना, लेजर किरणें आजकल ऑपरेशन जो है ना वो भी चीर फाड़ नहीं करते हैं, अधिकतर लेजर किरणों से ऑपरेशन कर देते हैं। बाबा की लेजर किरणें आत्मा के संस्कार जो बन गए, कड़े संस्कार, देह मान वाले, देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में विकल्प लाना, विकारी संकल्प विकल्प चलाना, ये जो संस्कार बना हुआ है, इस सब को लेजर किरणों से समाप्त किया जा सकता है। जब तक बाबा की पवित्र किरणें, सफेद सफेद पवित्र किरणें आई और मैं पवित्र स्वच्छ रूप में बैठा हुआ, जो उसमें गंदगी आ गई वो खत्म हो रही, संस्कार चेंज हो जाएंगे, इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएंगी, फिर निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख में समान स्थिति में रहेगी। इसलिए कहते योगी वो है जो समान स्थिति में रहता है, कहीं पर भी कोई ने महिमा कर दी एकदम खुश हो गया, कोई ने ग्लानी कर दी एकदम मूड खराब कर लिया, ऐसा योगी नहीं चाहिए। हम सब बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति को पहचाने और उसका प्रैक्टिकल अनुभव करके देखें। आप जाते हो चलते हो, मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर के चल रही हूँ, मैं भोजन कर रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने के लिए भोजन दे रही हूँ, कर्म कर रहे हैं, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। डबल करावनहार की स्मृति है, एक बाबा मुझे आत्मा को निमित्त बना करके इस श्रेष्ठ कर्म करा रहा है, लेकिन मैं आत्मा निमित्त बन करके इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूं। कभी भी कर्म बंधन नहीं बनेगा, आजकल आत्माएं कर्म बंधन में बंधती जा रही हैं, और बंधन तो सदा दुख ही देता है, बंधन शब्द ही दुख का है। कोई भी कहीं बंधा हुआ है, संबंधों में बंधा हुआ है, धन में बंधा हुआ है, पदार्थों में बंधा हुआ है, अपने संस्कारों में बंधा हुआ है, बंधा हुआ व्यक्ति बंधन वाला सदा दुखी है, परेशान है। बाबा अपने बच्चों को बिल्कुल निर्बंधन स्वतंत्र बनाना चाहता है। तो हम सब जिन व्यसनों के, बुराइयों के, संस्कारों के गुलाम बन गए, अधीन बन गए, अब हम सब इन गुलामियों से, इन बंधनों से मुक्त एक आत्मा है, उड़ता पंछी हैं, इस डाल पर बैठे हैं, इस डाल को छोड़ा, इस डाल पर चले गए। पंछी की अपनी कोई डाल नहीं होती, तोते की तरह नहीं डाली को पकड़ के कहो मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। बाबा कहता छुड़ाएगा कौन, तुम पहले छोड़ तो छूट जाएगा। कई लोगों ने लौकिक डालियों को ऐसे पकड़ के रखा है, मेरा बंधन है, मेरे पति का बंधन है, मेरे समाज का बंधन है, मेरे बच्चों का बंधन है, मेरे फलाने का बंधन। बोला बाबा कहता है बंधन कोई नहीं, तुम छोड़ तो छूट, संकल्प करो बाबा बैठा है सब छूट जाएगा। हिम्मत चाहिए। आज इतनी सब दादियां कैसे आई छूट करके, कितना धक से सबको भूल गई, एक धक से निर्णय ले लिया, आए मैं क्या करूं, छोटे बच्चे हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, अगर वो सोचती रहती तो वही बंधन में बंधी रहती। बाबा ने अपने बच्चों को एकदम इस संगम पर कहता है मेरे नाम पर निर्बंधन बन जाओ, तुम सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगो, अपने आप लौकिक बंधन कट जाएंगे। लग के तो देखो, पहले लगो तो, बंधन बंधन नहीं करो आप, जितना समय मिल सकता है बाबा की सेवा में लगो, तन से लगो, मन से लगो, धन से लगो, अपने आप वो सब लौकिक बंधन कटते जाते हैं। आत्मा निर्बंधन स्वतंत्र। सबसे बड़ा बंधन पता कौन सा है, मन का बंधन है, कमजोर संकल्पों का बंधन है। क्या करूं, मेरा तबीयत ऐसा है, मेरा शरीर काम नहीं करता है, मैं सवेरे उठ नहीं सकती हूं, मैं उठूंगी तो ये हो जाएगा, मैं ये खा लूंगी तो ये हो जाएगा, ये सब मन के कमजोर बंधन है। और बाबा अपने बच्चों को कहता है मन मना भव, मन मेरे में लगा, ये बंधन कट जाएगा मन का। तो हम सब बाबा के बच्चे जितना समय मिले, जब समय मिले, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से भिन्न हूं। भले स्थूल में लिखने की आदत नहीं है, भले नहीं लिखो, लेकिन बाबा ने पहले पहले बहुत अच्छा पाठ पक्का कराया। अभी लास्ट के दिनों की एक बात सुनाता हूं। हमारी यीशु दादी कुछ समय लास्ट में, पिछले साल शरीर छोड़ा था, उनकी डायरी मुझे दी बहनों ने, उसमें बार बार लिखा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लास्ट में अभी उन्होंने अपनी डायरी को पूरा भरा हुआ था मैं आत्मा हूं। और जबकि पूरा ज्ञान उनके पास, सारी जो मुरलियां हैं ना यीशु दादी के हाथ की लिखी हुई हैं, साकार मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां तो मैंने लिखी, बाबा आए मैंने लिखी, लेकिन साकार में जितने बाबा की मुरलियां चली उन सब के नोट्स दादी ने लिए, यीशु दादी ने, और नोट्स के आधार से साकार मुरलियां बनाई। लेकिन लास्ट में वही पहला पाठ पक्का किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, शरीर से अलग हो गई, न्यारी हो गई। तो हम सब बाबा के बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति का अच्छा अभ्यास करें और आत्मा देख करके एक दूसरे से बात करें। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे आत्मा रूपी मणि को देखो, जैसे सर्प मणि को लेप लेता है, मणिधारी सर्प जो होता है मणि की कीमत होती है, सांप की नहीं, ऐसे इस शरीर रूपी सर्प के बीच में आत्मा रूपी मणि विराजमान है। मणि पर ध्यान दो तो कभी भी सांप आपको डसेगा नहीं, माना विकारी संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, नहीं तो स्वप्नों में वही अशुद्धि, संकल्पों में वही अशुद्धि, परेशान हो रहे हैं विकारों के अधीन, कई उन्हें छोड़ दिया है काम विकार को लेकिन उसने उनको नहीं छोड़ा, कहीं न कहीं परेशान करता है। हम सब बाबा के बच्चे, अगर संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण बाबा के समान स्वच्छ पवित्र बनना है, तो मैं आत्मा इससे अलग हूं। ये आत्माएं हैं, ये पे पार्ट बजाने के लिए आई हैं, खिलाड़ी हैं, खेल खेल रही हैं। बहुत अच्छी तरह से आत्मा का पार्ट पक्का करो, आत्म अभिमानी बनेंगे तो स्वराज्य अधिकारी अपने आप बन जाएंगे, स्वयं पर स्वयं का राज्य हो जाएगा। देखने पर, बोलने पर, सुनने पर, हर बात में जो कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, स्वशासन है अपना, बिना कहे बिना सोचे हम कुछ नहीं कर सकते, मालिक बन करके रहना, यही आत्म अभिमानी स्थिति है। और इस आत्म अभिमानी स्थिति से देह अभिमान सदा के लिए समाप्त हो जाता। बहुत नम्र चित, सरल चित, मधुर भाषी, निर्माण चित आत्मा अपने आप बन जाती है। अभी तक भी कईयों के मुख से कटु वचन निकलते हैं, कड़वे वचन निकलते हैं, जोश में गुस्से में क्या क्या बोल देते हैं, लोगों को अपमान कर देते हैं, गालियां दे देते हैं, ब्राह्मण कहलाएंगे, ब्राह्मण है ये बाबा के बच्चे, कभी भी मुख से कुवचन नहीं निकाल सकते। बहुत सरल भाषा, मधुर भाषा, दूसरों को सुख देने वाले बोल ही हमारे मुख से निकले, अपमानजनक शब्द मुख से न निकले, तब कहेंगे मालिक है ये। मालिक बन करके जो बोलना है वही बोलो, जो देखना है वही देखो, जो सुनना है वही सुनो, जितना सोचना है उतना सोचो, नहीं तो स्टॉप, मैं आत्मा हूं। अभ्यास करके देखना, बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। और आप यहाँ 3-4 दिन हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, क्लासेज मिलेंगे, लेकिन आत्मा समझ करके अगर बैठोगे तो अच्छे अनुभव होंगे, क्लास भी अंदर जाएगा नहीं तो बाहर निकल जाएगा। तो हम सब इसका अभ्यास करते करते आत्म अभिमानी बन करके देह अभिमान को सदा के लिए परिवर्तन करें और बाबा के साथ संपन्न बन करके उड़ करके घर चलें। ओम शांति। अभी 5 मिनट के लिए सब इसका अभ्यास करो, अनाउंस नहीं अभी करना, 5 मिनट बहुत शरीरी स्थिति का, विदेही स्थिति का, एक लाइट हूं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान चैतन्य शक्ति हूं, अपने स्वस्वरूप को देखो दिव्य नेत्र से, स्वधर्म में स्थित हो जाओ और अपने स्वदेश में अपने स्वपिता से मिलन मनाओ।